नमस्कार, आदा, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मम्मा अर्थात जगदम्बा सरस्वती, जो इस विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी, उनका संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ अर्पित था। उन्होंने गहन तपस्या करके आज ही के दिन अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। यही कारण है कि 24 जून को मम्मा डे के रूप में उनके स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर, मेरी माँ।
मैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ रहा था तो बहुत सारी महानताएं उनके जीवन में थीं जो वास्तव में सबको प्रेरित करने वाली हैं। इसीलिए मैंने विशेष भ्राता जी से अनुरोध किया कि आज के दिवस पर अवश्य मम्मा के जीवन चरित्र को हम सबके सम्मुख रखें, ताकि उनके जीवन से हम भी बहुत कुछ सीखें, आगे बढ़ें और समाज के लिए अपना भी कुछ योगदान दे सकें। तो आइए, भ्राता जी के अभिनंदन के साथ साथ हम मम्मा अर्थात मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन चरित्र को जानें, समझें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है।
शुक्रिया।
विशेष दिवस है भ्राता जी आज, पूरे ही कुमारी इस परिवार के लिए मम्मा डे विशेष रूप से मनाया जाता है। हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि मम्मा डे विशेष करके मातेश्वरी जी की स्मृति में मनाया जाता है, लेकिन बचपन उनका कैसा था, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उनके परिवार में और कौन कौन थे, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं।
देखिए, हमारे यहाँ कोई भी जो दिवस मनाया जाता है
जी,
वो इस तरह से नहीं जैसे संसार में होता है, पर इस तरह से कि हम उनको याद कर उनके जीवन की महानताओं से कुछ श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त करें। हमारे यहाँ किसी की भी न तो पूजा पाठ होती है, लेकिन जो जिसमें महानताएं हैं उनको जीवन में अपनाकर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मातेश्वरी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी। वो छोटी आयु में यहाँ पर आ गई थी, अमृतसर में उनका जन्म हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी वहीं हुई, फिर मुंबई में हुई, फिर वो हैदराबाद में चली गई और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिताजी और अंकिल की मृत्यु हो गई, तो घर में एक वैराग का माहौल हो गया और उसी टाइम बाबा ने वहां सत्संग प्रारंभ किया था। तो अनेक लोग शांति अनुभूति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बाबा के पास आया करते थे। तो मामा के परिवार को भी किसी ने संदेश दिया, कई थे उसमें, मामा की माँ थी, मौसी थी, दूसरी मौसी थी, बहनें थी, तो उनको भी कहा कि इनका जीवन बड़ा शांत हो गया है, तो किसी ने कहा चलो तुम भी दादा के सत्संग में चलो। बस ये सब आए और मामा ने जैसे ही बाबा को देखा, नाम उनका राधा था, और बस ऐसा लगा मेरे सच्चे पिता तो यही हैं, मैं आ गई जहाँ मुझे आना था, और वो जो शोक था मृत्यु का, वो जैसे क्षण भर में लोप हो गया और फिर से वो प्रभु मैं होने के लिए तत्पर हो गई।
हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े
ये छोटी सी कहानी है उनकी, बस आई और रम गई, यहीं से शुरुआत होती है उनके सुंदर जीवन की। बाबा ने देखा ये कन्या बहुत गुणवान है। तब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष रही थी
जी। ये किस सन की बात
ये हाई स्कूल उन्होंने किया था और ये बात 36-7 के बीच की रही है
जी।
हाई स्कूल उन्होंने किया था और वो क्योंकि परिवार में दुख का माहौल हो गया था तो वो बाबा के पास आ गई। बाबा ने देखा ये कन्या बहुत सुशील और बाबा को भी आभास हो गया कि ये महान आत्मा मेरे पास आई है। जैसा हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में तो निराकार शिव की पधरामणी होती थी
जी।
तो ब्रह्मा बाबा की तो अपनी आंखें थी, अपना विवेक था, लेकिन जो सर्वशक्तिवान है, जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञ है, उसने उन्हें देख लिया कि ये वही है जो कभी राधा थी। राधा तो नाम इसका अब है, लेकिन ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, यही आगे चलकर महान तपस्विनी बनेगी और मेरे कार्य को संभालेगी। बस बाबा की ओर वो खींची चली आई। यहाँ बात ब्रह्मा बाबा की नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ओर वो खींची चली आई। मामा देखने में बहुत सुंदर थी, गाती भी बहुत सुंदर थी, वीणा बजाती थी, डांस भी बहुत अच्छा करती थी, वास्तव में पढ़ते समय वो बहुत फैशनेबल भी थी, लेकिन यहाँ आते ही सब छूट गया। गीत तो मामा अब भी वीणा पर गाती थी बहुत सुंदर, और उनके मुख से जो गीत निकलते थे, देखिए गीत तो गायक बहुत हैं, लेकिन कुछ गायक ऐसे होते हैं जो पूरी सभा को मग्न कर देते हैं, और यहाँ क्योंकि साधनाओं का मार्ग था तब भी अब भी है, तो जैसे ही सब लोग आत्मिक स्वरूप में बैठते थे और मामा गीत गाती थी तो सभी जैसे कि समाधिस्थ हो जाते थे।
साधना में संगीत का एक अहम
रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है। सब जैसे समाधिस्थ हो जाते थे, सबके चित्त शांत और एकाग्र हो जाते थे, तो वास्तव में जैसे ही उन्होंने यहाँ पहला कदम रखा, वरदाता परमात्मा ने उनको अनेक वरदानों से संपन्न कर दिया था, उनकी वाणी में भी तुरंत प्रभाव आ गया और किसी को पता ही नहीं चला कि कब वो महान बन गई।
शिव ज्ञान उच्चारण किया और मोह मिटाया था, सब जागृत आत्माओं को शिव शक्ति बताया था। संगीत पुजारी थी बड़ा सरस्वती
जी। वही बात मैं कहने वाला था, आपने कहा उनका नाम राधे था, तो हम यहाँ लगातार उन्हें मम्मा कहते हैं, तो ये मम्मा नाम उन्हें किसने दिया और इसका भाव क्या था वास्तव में मम्मा नाम देने का?
शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा तन में आते थे
जी,
तो तब बाबा अनेक बहनों को ध्यान में भी ले जाते थे, यानी उन पे दृष्टि डालते थे और वो समाधिस्थ हो जाती थी, तो वो देखती थी कि ये जो लड़की राधा ही है, ये सरस्वती है, वही सरस्वती है जिसको विद्या की देवी कहा जाता है, जिसकी आराधना स्कूलों में होती है रोज रोज, जिसके आगे सभी बच्चे नमन करके खड़े हो जाते हैं, ये वही है। तो फिर संदेश आ गया कि इसका नाम सरस्वती, और फिर धीरे धीरे क्योंकि उसकी आयु बहुत छोटी थी,
कहाँ से संदेश?
ये संदेश जैसे मैंने कहा कि ध्यान में बहुत बहने चली जाती थी
जी।
और सूक्ष्म लोक में वो भगवान से मिलती थी, उनके मैसेज ले आती थी, तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को उन्होंने मैसेज दिया कि शिव बाबा ने ये दृश्य दिखाया है कि यही वो सरस्वती है वीणा वादिनी। तो इस तरह उनका स्वरूप चेंज होता गया, मैच्योरिटी आती गई, और मैं कह रहा था कि उनसे बड़ी आयु की तो बहुत थी, अब वो 17 साल की हो गई थी, उनसे बड़ी आयु की 30 साल की, 35 साल की बहनें, माताएं और भाई तो बुजुर्ग भी बहुत थे, लेकिन फिर वैसे ही संदेशियों के द्वारा ऊपर से संदेश आया कि यही मामा है, यही जगदम्बा है, अब तुम इसे स्वीकार करो। तो उस टाइम कुछ लोगों का अहम भी जागृत हुआ, क्योंकि कुछ लोग बड़े बड़े घरों से भी यहाँ आए हुए थे और मामा एक साधारण परिवार से आई थी। लेकिन जब बार बार शिव बाबा ये संदेश देने लगे कि यही मम्मा है तुम सबकी, इसी के द्वारा तुम सबकी पालना होगी, तो फिर धीरे धीरे मतलब दो चार मास में सभी ने ये स्वीकार कर लिया कि यही मम्मा है। और सचमुच ये नाम उन्हें मिलते ही उनमें एक माँ के गुण आ गए, लोग उन्हें मातेश्वरी कहने लगे, वो सबकी पालना करने लगी। और जैसे माँ अपने पूरे बच्चों की हर तरह से देखभाल करती है, बहुत केयर करती है, वो करती है।
ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।
जी वही एक विशेष चीज मैं जानना चाहता था, जैसे आपने कहा 16-17 वर्ष की उम्र में आ गई थी और उनसे बड़े बड़े उम्र में भी बड़े अनुभव में भी बड़े काफी लोग यहाँ थे, फिर भी परमात्मा ने श्री बाबा ने जैसे आपने कहा संदेश के माध्यम से इन्हें इस विश्वविद्यालय का मुख्य बनाया, इन्हें इस सरस्वती की पदवी प्रदान की, तो जरूर कुछ न कुछ विशेष बातें रही होंगी इनमें, कुछ खासियतें रही होंगी जिनको देख करके विशेष करके ये पदवी और साथ ही साथ ये जो एक पदभार इन्हें दिया गया, तो वो क्या विशेष बातें थी मम्मा में राधे में जिसके कारण उन्हें ये विशेष पद भी दी गई।
हमने दादी प्रकाशमणि के मुख से अनेक बार ये चर्चाएं सुनी थी, क्योंकि दादी और मामा एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ बैठते थे, दोनों की पहले से बहुत फ्रेंडशिप थी। तो दादी प्रकाशमणि कहा करती थी कि ये राधा शुरू से ही सबको बहुत आकर्षित करती थी, केवल रूप से नहीं लेकिन अपने गुणों से, अपनी कलाओं से। और जब वो वहां भी गीत गाती थी तो सचमुच मंत्र मुग्ध कर देती थी पूरी सभा को, बहुत धैर्यवान, बहुत सुरीली आवाज, मुख पर एक अलौकिक सी मुस्कान पहले से ही, जैसे पहले से ही वो बहुत ज्यादा बाह्यमुखी नहीं थी, दूसरों की केयर करने के संस्कार, बहुत गंभीरता, ये सब गुण उनमें आ ही गए थे। और फिर जैसे उनको मामा का टाइटल दिया, तो यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से होती है कि परमात्मा शक्तियां और उसके वरदान मिल जाते हैं, वो स्वतः ही दे देता है, तो बाकी रही सही चीजें उनमें स्वतः ही आ गई, उनको बहुत धैर्यवान बना दिया। क्योंकि 380 भाई बहने थे, अब उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे, कन्याएं, माताएं, बड़ी आयु की भी, छोटी आयु की भी, 3 साल से लेकर और 35 साल तक के, आप सोचो।
और ये सारे लोग समर्पित थे, जैसे हम कहते हैं विद्यालय की शुरुआत हुई तो ये सब जैसे समर्पित,
इन सब ने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था, कई परिवार सहित समर्पित हो गए थे, माँ बाप भी, बच्चे भी, दादा दादी भी, कईयों ने अपनी संपूर्ण धन संपदा भी अर्पित कर दी थी। तो इन सब को संभालना इनका काम था। अब आप देख लिए किसी घर में 2 नारी भी हों, उनको संभालना आजकल कितना कठिन काम होता है। हमारे स्वामी शिवानंद जी जो बहुत प्रसिद्ध हुए, वो बाबा को कहा करते थे कि बाबा आज तो हम लोग भी 2-4 बहनों को, हमारे यहाँ भी शिष्याएं आती हैं रहती हैं, संभाल नहीं पाते, आप 300 को संभाल रहे हैं, 300 बहनें थी लगभग, 300 को संभाल रहे हैं, अवश्य आपके पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं। तो यही शक्तियां उन्होंने मामा को भी दे दी थी। तो ये क्वालिटी उनमें जो शिव बाबा ने देखी कि ये सबको संभाल सकती है, सबको एकता के सूत्र में पिरो के रख सकती है, सबको निर्मल स्नेह दे सकती है, इसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने कार्यों के लिए पूर्ण जिम्मेदार और डेडिकेटेड है, तो शिव बाबा ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी।
बिल्कुल कथा जी, ये तो सारी विशेषताएं उनमें प्रारंभ में भी थी। क्या आपको लगता है कि ये एक विशेष जिम्मेवारी जब व्यक्ति को मिलता है तब भी उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, तो किस प्रकार का परिवर्तन मातेश्वरी जी में आना शुरू हो गया जब इस प्रकार की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हें प्रदान की?
देखिए, कई लोग जिम्मेदारी मिलते ही टेंशन में आ जाते हैं
जी,
परेशान होने लगते,
कुछ
हैं,
अहम में आ जाते
हैं। ये हुआ मामा के साथ, बाबा ने औरों को भी दिया, वे उनके असिस्टेंट बनाया कार्य सौंपे, क्योंकि सारे बड़े बड़े काम करने थे, तो कई लोगों ने तो छोड़ दिया, वही अपने बस का ये नहीं है, टेंशन होने लगी, इनको संभालना, ये काम नहीं करते, फलाना सुनता नहीं है। लेकिन मामा इन सब चीजों में इन सब से ऊपर थी, जो नहीं सुनता उसको सुनने के लिए तैयार करना, जो योग्य नहीं है उसको योग्य बनाना, जिसमें कोई कमजोरी है उसको उसकी अवेयरनेस दे के कमजोरियों से मुक्त कराना, ये क्वालिटी ममा में थी। तो आ भी गई जब मनुष्य को एक जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन आती उसी में है जिसमें पहले से ये चीजों के बीज पड़े हुए हों। जैसा मैंने कहा, कई लोग टेंशन में भी आ जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं कि हम तो अपना काम करेंगे भाई, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन कई लोगों को जिम्मेदारी महान बना देती है, चुस्त कर देती है, उनके आलस और अलबेलेपन को नष्ट कर देती है। तो मनुष्य अगर सोच लेता है कि मुझे इस कार्य को सफल करना है, अब ये सब लोग आए हैं, बच्चे भी हैं, इन्हें प्यार देना है, बड़े हैं, अब ये छोटी थी, देखिए एक बड़ी परीक्षा थी, भले लोगों ने स्वीकार कर लिया, फिर भी इन्हें ये ध्यान रखना था कि ये बड़े हैं, भले मामा मैं हूं, पर मुझे इनका सम्मान भी करना है, ताकि संगठन में एकता रहे और सब एक साथ मिलकर चलें। तो ये सब क्वालिटी उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सीख ली। बाबा के महावाक्यों में ये सब बात आने लगी। और देखिए, कोई भी उपदेशक या कोई भी गुरु अनेक बातें तो कहता ही है, लेकिन उसको जीवन में अपनाना सबसे तो नहीं होता ना, लेकिन मामा ने फटाफट पहली पहली बार सुनते ही उन चीजों को अपना लिया। तो जैसे वो बनी बनाई देवी थी, तो सबको ऐसा लगा, जल्दी ही सबने स्वीकार कर लिया कि ये साधारण नहीं, ये तो बनी बनाई देवी है। क्योंकि जब किसी की महानताओं की छाप दूसरों पर पड़ती है, तभी वो उसके सामने शीश झुकाते हैं।
बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ,
फिर से धरती पर आ जाओ।
रता जी, विशेष करके जैसे आपने कहा कि परमात्मा ने ही इन्हें जगदम्बा सरस्वती की पदवी दी और उन्हें उस नाम से पुकारा, और सभी लोग फिर इस नाम से ही मातेश्वरी जी को पुकारने लगे। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में या स्कूल्स की भी बात आपने की कि वहां पे हम देखते हैं सरस्वती माँ को अलग रूप में, हम देखते हैं कि बिल्कुल हंस वाहिनी है, वीणा वादिनी है, श्वेत वस्त्र धारिणी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, उनके हाथों में भी कई अलंकार दिखाए जाते हैं, तो क्या इस रूप से किस प्रकार से हम समझें कि वो जो सरस्वती हैं वही वास्तव में जो सरस्वती जगदम्बा जी हैं वो हैं?
देखिए, वैसे तो स्थूल रूप में मामा वीणा बजाती ही थी
जी।
लेकिन सत्य तो ये है कि वो ज्ञान से संपन्न हो गई थी। हम भी जब आए छोटे थे, हालांकि हम मामा से के जाने से पहले आ गए थे, लेकिन उन्हें देखने का यहाँ मौका नहीं मिला, हम छोटे थे, अपने वहीं शहर में रहे, लेकिन मामा की जो क्लासेज हम सुनते थे, जिनको मुरलियां कहते हैं, वो इतनी गुह्य होती थी, उनमें इतना गुह्य ज्ञान भरा होता था कि हमारे कपाट खुल जाते थे। यानी हमने मामा की मुरलियों से जैसे कहें सब कुछ सीखा, ज्ञान की गहराई और धारणाओं पर धारा प्रभाव, बोलना बिना रुके, बहुत सुंदर स्पीच। तो ये कहना बिल्कुल सार्थक है उनके लिए कि वो ज्ञान की देवी थी, ज्ञान से भरपूर थी। सबसे बड़ा ज्ञानी शिव बाबा, त्रिकालदर्शी, ज्ञान का सागर, फिर नंबर आता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती का। तो चाहे उनका दूसरा नंबर ले ले, चाहे तीसरा, ये टॉप मोस्ट स्थान उनके हैं। तो ज्ञान में वो भरपूर थी, संपन्न थी, इसलिए उन्हें ज्ञान की देवी कहा गया। इसलिए सभी मनुष्य उनसे बुद्धि या ज्ञान विद्या मांगते हैं। ये ऐसे ही नहीं है, किसी व्यक्ति ने वो कार्य संपन्न किया है तभी उसकी उस रूप में महिमा और गायन पूजन होता है। ममा से लोग सरस्वती से जाकर विद्या की याचना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो वो सचमुच विद्या की देवी थी। ऐसा कोई सृष्टि का रहस्य नहीं था जो उन्हें ज्ञात न हो। संपूर्ण ज्ञान और बड़े सिंपल लैंग्वेज में, बड़ी धारा प्रवाह युक्त भाषा में और लेक्चर में वो अपनी बात कहती थी। हम जानते थे कि जो लोग भी उनके सामने बैठे होते थे वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे, और बस ऐसा लगता था कि ममा की ये बात, ममा का ये भाषण चलता ही रहे। सबको प्रभु प्रेम में वो मग्न कर देती थी, सबको योगयुक्त बना देती थी, सबको श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर देती थी, और एक ऐसा अलौकिक जादू सा चारों ओर फैल जाता था कि सब वहाँ बंधे बंधे से बैठे रहते थे। इसलिए बहुत सारे लोग तब हमने देखे, हम छोटे थे पर आते थे, जो बड़े खूंखार दुनिया में
जी।
लेकिन ममा के भक्त, बस ममा ही सब कुछ है। तो ये जो उनको विद्या की देवी कहा गया है सरस्वती, ये इसीलिए कि सचमुच ये चीज उनके पास थी।
तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, घर घर में तेरी पूजा तू करती हो सबके भंडारे। दुनिया से आके मिटा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ,
फिर से धरती पर आ जाओ।
लोग उनसे मिले, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा थी उनके पास। लेकिन लोगों के मन में जो एक सरस्वती का रूप है, जिनके चार हाथ हैं, जो इस प्रकार से गायन की जाती है, तो मम्मा को क्या उस रूप में आज जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें नहीं देखा है स्वीकार कर पाएंगे?
देखिए, ये तो जो भी पूजा भक्ति में होती है जिनकी भी, जैसे जगदम्बा की अष्ट भुजाधारी के रूप में महाकाली का भी एक स्वरूप है, सरस्वती की भी चार भुजाएं, वीणा और सबके तो में अलग अलग अलंकार रहते हैं, ये तो उनकी क्वालिटीज के प्रतीक होते हैं। ऐसा नहीं महाकाली को इस तरह की भयानक थी या उसने गले में मुंडों की माला डाली हुई थी, लेकिन ये प्रतीक हैं कि माया पर उन्होंने विकराल रूप धारण किया।
मतलब किसी के चार और आठ हाथ होते नहीं हैं, प्रतीक हैं ये
उनके सद्गुणों का, उनकी आंतरिक शक्तियों का, उनकी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रतीक होते हैं। जैसे किसी के हाथ में गदा दिखाते हैं या भाला दिखाया हुआ असुर का संहार कर रहे, तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, और जो ये असुर हैं ये मन की दूषित बुरे संस्कार, क्रोध, अहंकार, विषय विकार, इनको नष्ट किया उन्होंने, उनके प्रतीक रूप में ये दिखाते हैं।
तो ये जो चार विशेष करके सरस्वती को दिखाए जाते हैं भ्राता जी अलंकार, उनके एक हाथ में पुस्तक दिखाई जाती है, एक हाथ में माला, एक हाथ में वीणा और एक हाथ में अमृत कलश दिखाया जाता है, तो ये किस बात के प्रतीक है जो मम्मा जगदम्बा?
देखिए, वीणा वही
जी जो ज्ञान,
हाँ, कि ज्ञान उन्होंने दिया, अमृत ज्ञान को ही कहते हैं, ज्ञान अमृत उन्होंने बांटा, बुक वेद शास्त्र दर्शन माना संपूर्ण ज्ञान उनके पास था, तो ये सब चीजें उसी की यादगार। और माला, माला एक विशेष रूप से देखिए भक्ति की यादगार दिखाई गई, लेकिन वो एक महान योगिनी बन गई थी प्रारंभ से ही, बाद में नहीं। जैसे वो आई, कुछ ही समय के बाद लोगों ने देखा कि तपस्या का जितना रस और जितनी लगन उनके पास है उतनी औरों के पास नहीं थी। तो ये चारों अलंकार उनकी इन चारों क्वालिटीज को दर्शाने वाले हैं, ये चारों इसलिए दिखाए गए हैं।
और विशेष करके जो ये हंस दिखाया जाता है भ्राता जी, या श्वेत वस्त्र दिखाए जाते हैं, ये किस बात से रिलेट करते हैं?
यही कि देखिए, श्वेत वस्त्र पवित्रता के हैं, और हंस भी एक पवित्र चिन्ह है जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, तो ममा में भी ये परखने की शक्ति बहुत ही जबरदस्त थी। हंस माना एक बहुत ही सुंदर वाहन है, मोर भी सुंदर है, पर हंस का नाम सुनते ही देखो मन कैसा हो जाता है। हंस वाहिनी उसे इसी तरह कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत ही मधुर थी, चेहरे पर मुस्कान थी, मन में सभी के लिए निर्मल प्यार था, सभी दुर्गुण उसने नष्ट कर लिए थे। कोई एक को महत्व दे, दूसरों को जरा रिजेक्ट करे तो खेल बिगड़ने लगता है। तो हंस जो एक सर्व प्राप्तियों और गुणों का प्रतीक कहें हम उसे, वो उनके जीवन में था, इसलिए वो उनका वाहन दिखा दिया गया।
मैं विशेष मम्मा की जीवन कहानी पढ़ रहा था व्रता जी, क्योंकि मुझे बहुत रुचि थी कि मैं भी जानूं इनके बारे में, इतनी महान हस्ती हैं। तो बहुत सारे अलंकार इन्हें प्रदान किए गए हैं, और जो मैंने अलग अलग लोगों के अनुभव आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें किसी ने कहा कि सिंह वाहिनी थी मम्मा, किसी ने तपस्विनी कहा, किसी ने आदि शक्ति कहा, इस प्रकार की। तो ये सारी जो टाइटल जो मम्मा को दिए गए हैं, ये परमात्मा शिव ने इन्हें प्रदान किए, या सभी ने अपने अनुभव से ही मम्मा को इस रूप में जानना और पुकारना शुरू किया?
देखिए, दिए तो स्वयं निराकार परमात्मा ने, लेकिन फिर लोगों ने उस स्वरूप में उनको देखा।
क्या मम्मा से साक्षात्कार भी हुआ?
मम्मा से बहुतों को साक्षात्कार होते थे, घर बैठे होते थे, यही नहीं वो मम्मा का स्वरूप देखते थे और उन्हें उनके पास्ट के जन्म की और भविष्य के जन्म की पूरी झलकियां दिखाई देती थी। उससे उनको स्पष्ट होता था यही जाकर श्री लक्ष्मी बनने वाली है राधा, और यही सरस्वती है, भक्ति में जिसकी पूजा हो रही वो यही है। तो क्या होता था कि सरस्वती दिख रही है, अब उसका स्वरूप लोप होता है, फिर उसकी जगह मम्मा आ जाती है, फिर मम्मा का स्वरूप लोप हो जाता है, फिर सरस्वती आ जाती है। इस तरह के साक्षात्कार बहुत होते थे, फिर वो दोनों लोप हो जाते हैं, उसी जगह लक्ष्मी दिखाई देने लगती है। तो ये सब साक्षात्कार एक को नहीं, अनेकों को होते रहते थे उस समय। तो शिव बाबा ने उन्हें ये कहा तो अवश्य था, लेकिन ये साक्षात्कार भी बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए सभी के मुख पर ये शब्द ही आ जाते थे। जब लोग मिलने बाबा से आते थे जिनको इस तरह साक्षात्कार हुआ, अब वो जो उनकी झलक थी, जो उन्होंने देखी थी वो सामने, अरे ये तो वही है, और बस वो उसी रूप में भाव विभोर होकर मामा के चरणों में आ जाते थे, गले लगने लगते थे। तो हमारी माँ है, आप तो सरस्वती हो, आप ही वो हो जिनसे आज तक हम मिलना चाहते थे। ये सीन बहुत चलते थे।